तो उन्होंने कहा कौल अराइता इद अवैना लिस्सुखरति फइन्नी नसीतु अलहूत। उन्होंने कहा किसने, यूशा बिन नून ने, जो उनके खादिम थे, स्टूडेंट थे। आपने देखा कि जब हमने वो उस चट्टान के पास पना ली थी, वहां पे आराम करने के लिए लेटे थे, तो मैं भूल गया आपको मछली का बताना, और मुझे भुलाया नहीं मगर शैतान ने कि मैं इसका जिक्र करूं आपसे। उन्होंने फौरन अपनी गलती को मान लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आई बाएं शाय करने, ओहो मैं अभी लेकर आता हूं मछली, ओहो कहां गई मछली, वो मुझे तो पता ही नहीं चला। नहीं, अपनी गलती को मानना कि मैं भूल गया था। और शैतान हमेशा इंसान को कोई भी नेकी का काम, कोई भी अहम काम भुलवा देता है। इसीलिए उलमा कहते हैं जब आप कुछ भूल जाए तो औजुबिल्ला पढ़े। आम जिंदगी में आप भी, आप देखिए, नमाज भुलवा देता है, नमाज के अंदर कोई सूरत भुलवा देगा, इसी तरह और चीजें भुलवा देता है। तो शैतान का ये काम है, लेकिन जब इंसान का इरादा पक्का हो तो फिर वो इसकी परवाह नहीं करता। तो अब वो बता रहे हैं कि मुझसे, मैं भूल गया आपको बताना, और उसने अपना रास्ता ले लिया समुंदर में अजीब ही तरीके से। अच्छा, अब आप ये भी देखें कि जब इंसान से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो बजाय उसको कवर करने के झूठ के साथ या उसको छुपाने के किसी और तरीके से, इंसान सही बात को बयान कर दे, इसमें ज्यादा बेहतरी है उसके लिए। ठीक है, तो यहां से हमें ये सबक मिला, कभी भी भूल चूक से, इंसान है, भूल चूक हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट से गलतियां हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह कि उसके बाद उस गलती पे जम ना जाए, बल्कि उस गलती को फिक्स करने की कोशिश करें और सच बोले, ना कि इंसान झूठ के साथ उसको कवर करे। ठीक है, यही सही रवैया कि इंसान सच बता दे। अच्छा, अब उन्होंने बता दिया कि इस तरह से हुआ, काला दालिका मां कुन्ना नब, तो उन्होंने कहा यही तो है जिसको हम चाहते थे, इसके लिए तो हम आए थे। फरतदाला सारी मकससा, तो वो दोनों पलटे अपने निशानों पर, निशाने कदम पे तलाश करते हुए, फॉलो करते हुए उसी रास्ते को फॉलो उन्होंने किया जिससे आए थे ना, उसी पे वापस गए, क्योंकि आगे जो निकल गए थे। तो इससे हमें एक बात ये पता चली कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कोई डांट डपट नहीं की, कोई सरस नहीं किया। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मैं भूल गया था। तो इस अल्लाह ताला ने भी इस उम्मत पे से, हदीस में आता है, भूल चूक को माफ किया। इसे हमें पता चलता है कि एक उस्ताद को भी अपने शागिर्दों की भूल चूक के ऊपर, उनके ऊपर इस तरह नहीं कि बिल्कुल सख्ती करके खड़े हो जाए, या इसी तरह और लोगों के भी, आपके घर में किसी से भूल हो जाती है, हस्बैंड भूल गए कोई चीज लाना बाजार से, आपकी माशाल्लाह एनिवर्सरी भूल गए, तो अब उसके बाद इतने बरहम होने की जरूरत नहीं, आप भूले तो वो भूले कैसे फिर, आपको यही भूल गया, आपको कैसे भूल सकता है, आपको मेरी बर्थडे भूल गई, आपको फलां चीज भूल गई। भाई, भूल इंसान के साथ लगी भी है, निसियान इंसान के साथ है, इंसान है ही खता का पुतला, भूल चूक का पुतला। तो इसलिए इसके अंदर इतने बरहम होने की, जब अल्लाह ताला माफ कर देता है कि इंसान अगर भूल जाए तो उसकी भूल को अल्लाह ने माफ किया, तो हम क्यों नहीं दूसरों की भूल चूक को माफ कर सकते। कि कोई अगर वाकई भूल गया है और उसका वाकई जेन्युइन एक्सक्यूज है, तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है कि हम उसको माफ कर दें और उसको दरगुजर कर दें। तो अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि अगर हम यहां पे होते तो हमने कितना गुस्से में आना था कि एक मछली तुम्हारे हवाले की और तुम वही भूल गए और तुमने उसका ही नहीं बताया, और तुम भूले तो भूले कैसे। अब देखो हमें कितना सफर करना पड़ा, हम आगे निकल गए और वजबनाक होते या कुछ होते नहीं। अब आप खुद सोचें, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपके बच्चे ने रास्ता नहीं बताया, या हस्बैंड को रास्ता भूल गए कहीं और चले गए, फिर उसके बाद फिर क्या होता। तो यहां पे हालांकि उनके अंडर हैं यूशा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो उनके ऊपर कुछ रोब झाड़ के और उनको बुरा भला कह रहे हैं और सख्त गुस्सा और सख्त सुस्त कह रहे हैं और मैंने तुम्हें दी ही क्यों, और ऐसे ये नहीं नजर आता हमें। ये भी हमें पता चल रहा है कि वो एक नौजवान है। बाद में आपको पता है ये भी नबी बने थे, यूशा बिन नून। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो यही बनी इसराइल को लेकर फिर दाखिल हुए थे फलस्तीन में। और ये सुभान अल्लाह वो वाले पैगम्बर है जिनके लिए अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया था, वक्त को ठहरा दिया था, जब इन्होंने दुआ की थी, जब दाखिल होने लगे थे। जुमे की शाम थी तो सैटरडेज को ये लोग काम नहीं करते थे, यहूदी ना इबादत का दिन था, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी तो कि या अल्लाह के सूरज को ठहरा दे कि वो दाखिल हो जाए उस वक्त, तो अल्लाह ताला ने सूरज को ठहरा दिया था। तो बहुत बड़े ये भी नबी हैं अल्लाह के, मगर उनकी भी आजी है देखें। और वो अल्लाह के नबी के साथ साथ रहते हैं, उनके साथ सीख रहे हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है, ये सबक मिलता है कि अपने से ज्यादा इल्म वाले के साथ रहने से इंसान इल्म सीखता है, कोई नसीहत की बात हासिल करता है, कुछ उसकी इसलाह होती है, कुछ वो उसको बहुत से मौके मिलते हैं वो उसको देख के और उसके मुताबिक अपने जिंदगी को ढालने में, या बहुत सारी चीजें इंसान लर्न करता है ना। अच्छा, अब वो वापस चल पड़े बगैर किसी शिकवे के और बगैर कुछ कहे हुए, अब उन्हीं कदमों के ऊपर वापस चले। अब ये भी देखें, एक कमिटमेंट है कि बाज दफा इंसान कहीं लॉस्ट हो जाता है ना, या आगे निकल जाता है, तो फिर वो उसकी डिटर्मिनेशन खत्म हो जाती है, कहते हैं चलो अब घर ही चलते हैं, अब रहने दो। लेकिन वो इतने कमिटेड थे ना कि उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हालांकि अभी क्या बताया कि थक भी गए हैं, भूख भी लगी हुई थी, और मछली भी नहीं अब रह गई उनके पास, तो भूखे ही आगे भी चले गए फिर पीछे आ रहे हैं। ये नहीं कह रहे छोड़ो ऐसे इल्म को, कमिटमेंट अंदाजा कीजिए इसका, और ये किसकी कमिटमेंट है। और साथ साथ हम अपनी कमिटमेंट्स भी देख लें, जरा सी थकावट हो जाए नहीं अब नहीं हम कर सकते, जरा सा कोई खाने पीने में ऊंच नीच हो जाए नहीं हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन देख लें मूसा अलैहिस्सलाम को, चल रहे हैं ना फिर भी। फवजद आबदन भी निबादी ना, तो उन्होंने पाया, दोनों ने, उन दोनों ने, किन दोनों ने, मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून ने, उन्होंने पाया एक बंदे को हमारे बंदों में से। अब ये बंदे कौन थे जिनका मैं उस वक्त से बात आपको कर रही हूं, खदिर अलैहिस्सलाम। खदिर कौन है? अच्छा, अब ये एक ऐसी बात है जो कहीं पे भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि खदिर अलैहिस्सलाम कौन थे, क्या वो नबी थे या क्या वो कोई फरिश्ते थे या क्या चीज थे वो। इसमें उलमा ने बहुत कुछ बहसें की हैं, और आप जितने स्कॉलर्स को सुन लें, जितनी तफसीरों को आप पढ़ लें, उनके अंदर आपको बहुत सारे दलाइल मिलेंगे। हर एक के अपने दलाइल हैं, कोई इस चीज पे इंक्लाइंड है कि वो एक नबी थे, कोई इस चीज पे इंक्लाइंड है कि वो फरिश्ते थे जिनको अल्लाह ताला ने एक इंसान के रूप में जमीन पे उतारा था कुछ काम करने के लिए। मेरा तो इल्म खैर बहुत कलील है, लेकिन पर्सनली मैं जिस तरफ सोचती हूँ, जितना कि मेरी आज तक मुताले में आया, कि वो कोई फरिश्ते ही थे। क्यों? इसलिए कि अंबिया के वो काम नहीं है जो कि यहाँ पे काम बताए गए, ना ही आप कहीं अंबिया की फहरिस्त में इनका नाम पढ़ेंगे। कुरान पाक में इनका नाम नहीं आया, हदीस में आया। इनका नाम कहीं कुरान में किसी के, बेशक और भी कई पैगंबरों के नाम नहीं आए, वरना ये पता चलता है किस बस्ती की तरफ ये मबूस किए गए इस किस्से में। बल्कि वो कुछ काम ऐसे लग रहा है इस किस्से से कि वो कुछ काम करने पे मामूर किए गए। जैसे अल्लाह ताला की जो, जिसको हम कहते हैं ना तकवीनी इल्म, यानी जो अल्लाह ताला के कुन कहने से जो इल्म होते हैं, जो गैब के उलूम है, उनमें से कुछ इल्म अल्लाह ताला ने उनको दिया गया, दिया था, जो उनके लिए जरूरी था इन कामों को करने के लिए, कि ये इस तरह से किया जाए। जैसे अल्लाह ताला के कई दुनिया के अंदर जो भी वाकयात होते हैं उन पे कई फरिश्ते मामूर हैं, कहीं कोई जान निकालने वाला है, कहीं कोई रिस्क लाने वाला है, कहीं बादलों को चलाने वाला है। इसी तरह यूं महसूस होता है कि जैसे ये कोई फरिश्ते थे। बाज कहते हैं कि नहीं ये नबी थे, और नबी वो कैसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि इनके पास जो इल्म था, उन्होंने एंड में आप देखेंगे उन्होंने कहा भी कि मेरे पास जो भी मैंने ये किया है ये अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। तो नबियों को ये अल्लाह ताला उनसे ही कलाम फरमाता है, किसी आम इंसान से तो नहीं कलाम करता। और ये भी कि वो नबी थे और उनके पास कोई और किस्म का इल्म था जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो शरीयत का इल्म था, उनके पास एक तकवीनी इल्म, जैसे जो मैं आपको बता रही हूँ अल्लाह ताला के इल्म गैब से मुतल्लिक, जो अल्लाह ताला कौन फरमा के जो करते हैं उससे मुतल्लिक जो इल्म है वो उनके पास था। जब बाद सूफिया दूसरी तरफ निकल गए, उन्होंने कहा कि उनके पास जो इल्म था वो था कि जो औलिया अल्लाह को दिया जाता है, जो इस आयत में भी आप देखेंगे मिल्लतुन्ना इल्मा, तो इल्मे लुदनी था जिसको वो कहते हैं, इल्मे लुदनी। आपने ये टर्म सूफिया के यहाँ बहुत बड़ी मशहूर है हदीस, और इसमें तो नहीं है कहीं पे भी ये, मगर वो इल्म जो डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को मिलता है, वो कहते हैं कि वो औलिया अल्लाह में से थे और औलिया अल्लाह में से वो इस मुकाम पे पहुंच गए जहां पे वो अब वो वाले काम करने लगे जो दुनिया का निजाम चलाने के लिए, और जिनको मैं आपको कह रही हूँ अमूर तकवीनी, उन वो जो वो अमूर है वो असर अंजाम देने लगे, कायनात के काम करने लगे, क्योंकि वो इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हैं। जबकि इसकी कोई भी कहीं से हकीकत, कहीं से कोई दलील, कहीं कुरान और हदीस से कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि औलिया अल्लाह इस तरह के मुकाम पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वो यहीं तक नहीं ठहरे, उन्होंने इससे भी आगे बढ़ के ये कह दिया कि देखें औलिया का मुकाम तो अंबिया से भी ऊपर है, इसलिए कि एक नबी जा रहे हैं एक वली से सीखने के लिए। तो ये सारी बातें सही नहीं है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम उलुल आजम पैगंबरों में से, और पैगंबर तमाम इंसानों से ऊपर होते हैं, और पैगंबरों में भी वो टॉप पे हैं, तो उनके ऊपर कौन से इंसान हो सकते हैं, उनसे ऊपर तो कोई इंसान नहीं हो सकता। तो ये कहना कि वली का दर्जा जो है वो नबी से भी ऊपर है, ये गलत है। अंबिया का दर्जा बुलंद होता है, वली का दर्जा नीचे है। तो वो अब फिर उन्होंने इस चीज से ये कहा कि ये कई शख्सियात हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनके पास सीक्रेट उलूम है जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट इनको कहे, जबकि हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला सिर्फ अंबिया की तरफ वही करता है, बाकी किसी तक भी डायरेक्टली कोई भी बातचीत अल्लाह ताला नहीं करता। वो कहते हैं कशफ हो जाता है, ये हो जाता है, और बल्कि ये हमारे जो औलिया हैं ये तो ऊपर आसमानों पे जाते हैं और जाके वहां पर इल्म लेते हैं। इब्ने अरबी के बारे में मशहूर है सूफिया के हाँ, एक इब्नुल अरबी है कि इब्ने अरबी है, तो इब्नुल अरबी की नहीं बात कर रही, वो तो सही है, इब्ने अरबी जिनको कहते हैं वो मशहूर सूफी हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि उन्होंने तो 70 मेराज की है, आसमानों पर गए, वहां पर सीख के आए। और सिर्फ इनके बारे में नहीं, और भी कई सूफिया के बारे में वो कहते हैं कि वो तो आलमे बाला में जाते हैं और वहां से वो सीख सीख के आते हैं, डायरेक्ट वहां से इल्म लेते हैं, वो वहां की मजलिसों में बैठते हैं, आपसे सलम की मजलिस में बैठते हैं और ऐसे करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां खदर अलैहिस्सलाम के बारे में भी मशहूर कर दी गई, क्योंकि उनको औलिया अल्लाह में से उन्होंने कहा कि हैं, तो जबकि इस बात के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। और वो सिर्फ इस तक नहीं ठहरे हैं, फिर आगे भी वो कहते हैं कि भाई वो तो जिंदा है, आज तक वो तो फौत ही नहीं हुए, जबकि इस तरह की भी कोई बात नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आपसे सल्लम ने फरमाया कि यहूदियों से फरमाया कि अगर मूसा भी आज जिंदा होते तो मेरे पास आते और मेरे ऊपर ईमान लेकर आते, ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो वो आपसे सलम पर ईमान लेकर आएंगे, तो क्या खिज़र अलैहिस्सलाम अगर जिंदा होते तो वो क्या आते ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और ईमान ना लाते? तो अगर वो एक ऐसी हस्ती थे जैसे ये लोग कह रहे हैं कि वो अल्लाह के वली हैं और जिंदा हैं आज तक, तो इसलिए तो ऐसी बात हमें नहीं मिलती। और फिर एक हदीस में भी पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा कराम से खुतबे में कि जो इस वक्त मौजूद हैं जमीन पे, जो भी इस वक्त मौजूद हैं, वो अगले 100 साल में नहीं होंगे। और एक सहाबी थे, वो ये 8 हिजरी का वाक्या, वो 108 हिजरी में वो फौत हो गए थे। यानी जितने भी आपसे सर ने फरमाया कि इस जमीन पे इस वक्त, तो इसकी वो आगे से तावील कर देते हैं, नहीं जी वो इस वक्त जमीन पे नहीं थे, वो तो पानियों पे थे और पानियों पे उनकी हुकूमत है। इसलिए आपने बार दफा सुना होगा कि कहते हैं कि भाई वो इस तरह तूफान आ रहे हैं तो खजर अलैहिस्सलाम को जो है ना आप पुकारे। अस्तग़फिरुल्लाह, ये शिर्क नहीं है तो और क्या है? और फिर वो कहते हैं वो ग्रीन है, वो उड़ते फिरते हैं और वो पता नहीं क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से जो भी करते रहते हैं और हर तरफ, ऐसा कुछ भी हमें इस किस्से में ऐसी कोई भी बात नहीं मिलती, हदीस में भी नहीं मिलती। अल्लाह बेहतर जानता है इन्होंने कहाँ से ये चीजें ढूंढी और कहाँ से ये इस चीज को बयान करते हैं। फिर वही फिर बात आ जाती है ना कि हम तो खुद ही पढ़ते हैं, हम खुद ही कहीं से किसी मजलिसों में बैठ के आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ की, और हम बताते हैं फिर आके, हमें कहीं से डायरेक्ट इल्म मिल रहा है। और आप ऐसे कुछ जाहिल ऐसे लोगों को आज भी देखेंगे जो अपने आप को बड़े उलमा कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हम तो जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ के आए हैं, वहां से हम सीख के आए हैं, और यहीं बैठे बैठे हम मक्का मदीना होके आ गए, यहीं बैठे बैठे हम तो आसमानों पे होके आ गए और वहां पे होके आ गए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। सहाबा कराम से ऊपर का दर्जा तो किसी का नहीं हो सकता ना, अंबिया के बाद जो सहाबा कराम का दर्जा आता है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम तो ऊपर से होके आ गए हैं, हम तो यहाँ पे बैठे बैठे आपसे सलम की मजलिसों में मौजूद होते हैं, उनसे हम तो सीखते ही जा रहे हैं। ये वल्लाह आलम कितने, किसी ने कहा मैं तो 30 साल पढ़ता रहा हूँ आपसे सलम की मजलिस में जाके, आज के जो सो कॉल्ड उलमास में से एक आदमी की बात कर रहे हैं, 30 साल में पढ़ता रहा हूं। वल्लाह आलम। तो ये है उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अब चूंकि हतमी इसमें कोई बात नहीं, इसलिए आपको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट बातें मिलेंगी, मगर आप किस्से से भी आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि कहीं पे भी नबियों के हालात में आपने ऐसी चीजें नहीं पढ़ी कि वो ऐसे काम करते फिर रहे हों, कहीं ऐसे ही लगता है कि इनको किसी तरह से मतलब इन कामों पर अल्लाह ताला ने मामूर किया हुआ है कि आप ये काम करेंगे, तो वो उनको कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन पे हैं और इंसानी सूरत के अंदर। फवजद आबदल में निबादीना, तो दोनों ने पाया एक बंदे को हमारे बंदे में से, ये हैं हज़र अलैहिस्सलाम। तो क्या अल्लाह ताला ने उनका इंट्रोडक्शन कराया? सुभान अल्लाह, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा आपसे भी ज्यादा एक इल्म वाले हैं, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन क्या कराया? एक आलिम आलमों में से, एक बहुत बड़े शेख, एक बहुत बड़े कुछ ऐसे करके नहीं, आब्द आब्द, देखें ये गुलाम हमारे गुलामों में से। अंदाजा कीजिए कि अल्लाह ताला के सामने इंसान कितना भी ऊपर चला जाए, उसके पास कितना भी इल्म आ जाए, लेकिन वो बंदा ही है, वो उसका गुलाम ही है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सूरह इसरा के शुरू में भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अब्दी कहा गया, इससे पता चलता है कि एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के हाँ जो बुलंद मुकाम पे पहुंचना है वो ये कि अल्लाह ताला उसको अपना बंदा कह दे। मैंने इबादीना, हमारे बंदों में से एक बंदा। और ये इबादीना वैसे तो सारे ही अल्लाह के बंदे, सारे इंसान अल्लाह के बंदे, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को कह दे, जैसे बैतुल्लाह है, नाकतुल्लाह है, तो उसकी ये एक तशरीफ के लिए होता है, यानी उसका शर्फ बयान करने के लिए, तो उसके ऑनर के लिए होता है। तो हमारे बंदे जिसको अल्लाह अपना बंदा कह दे, ये उसके लिए बहुत बड़ा ऑनर है। तो इंसान जितना भी ऊंचा चला जाए वो अब्द ही रहता है, वो ये नहीं हो जाता कि वो अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह ताला के बराबर कहीं हो गया या ऐसी कोई मुकाम पर पहुंच गया, वो अब्द ही रहेगा, वो कहां तक भी चला जाए। ठीक है, अब्द मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना, हमने उसको अपने पास से रहमत दी। रहमत का मतलब क्या? जिनका ख्याल ये है कि खज़र अलैहिस्सलाम नबी थे, तो वो कहते हैं रहमत से मुराद यहाँ पे नबुव्वत है। ठीक है, جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو اللہ تعالیٰ کی اور کئی انعامات ان کے اوپر تھے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے علم کو بھی اپنی رحمت فرمایا ہے, جیسے الرحمن علم القرآن ہے نا, تو قرآن سکھایا رحمان نے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور ہم نے سکھایا اس کو اپنے پاس سے علم. اللہ تعالیٰ نے ہی علم سکھایا, ان کا بھی کوئی علم اپنا نہیں کوئی کمال تھا, اللہ کا دیا ہوا علم تھا. یہیں سے مل لدنا جو ہے نا, یہیں سے انہوں نے بنا دیا علم لدنی, کہ ہمیں بھی علم لدنی ملتا ہے تو ہم جاتے ہیں, اور یہ علم کی ایک قسم ہے. آپ کبھی سنا ہوگا شاید آپ نے. اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ وہ جب گئے تو وہاں پر ان دونوں کو, یعنی یوشع علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو, خضر علیہ السلام ملے جو کہ بیٹھے ہوئے تھے ایک چٹان کے پاس, اور ان کے سر پہ کپڑا تھا جیسے ہڈ, آپ سمجھے ہڈ لیا ہوا تھا, اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کے ان سے فرمایا السلام علیکم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے پیغمبروں میں بھی سلام ایز گریٹنگ تھا, بلکہ یہ آپ کو پتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات سکھائی ہے وہ یہ سلام کرنا ہی سکھایا. فرمایا جا جا کے فرشتوں کو سلام کر کے اس طرح سے سلام کرنا, اور دیکھنا وہ کیا جواب دیتے. جب انہوں نے واپس جواب دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے گریٹنگ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے سلام اس وقت سے, تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان کو سلام کیا. تو انہوں نے کہا اس زمین پہ سلام, اس زمین پہ سلام, یعنی اس وہ ہو سکتا ہے. ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمین کے اوپر تمام لوگ مشرک ہیں, تو انہوں نے کہا سلام کہاں سے آ گیا یہاں پہ کہ کوئی سلام کرے. دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اس زمانے کے اندر سلام کرتے تھے اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے تھے کہ میں فلاں ہوں, تو انہوں نے کہا یہ کیسا سلام ہے, یعنی آپ نے اپنا انٹروڈکشن تو نہیں کرایا. تو دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں. انہوں نے پوچھا کون سے موسیٰ, بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں. سبحان اللہ, اس کا مطلب ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے, موسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں جانتے. موسیٰ علیہ السلام کا اتنا نام تھا, اتنی پہچان تھی کہ وہ ان کو پتا تھا ان کا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ خضر علیہ السلام سے اوپر کا تھا. یاد رکھیے بات, بھلے کہ ان کے پاس علم تھا لیکن جو درجہ ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا بلند ہے. کیونکہ اگر خضر علیہ السلام نبی ہے تب بھی وہ اول العزم پیغمبروں میں سے نہیں ہے, اگر وہ فرشتے مان لیے جائیں تب بھی فرشتے جو ہیں وہ انبیاء سے تو انسان سے تو نیچے ہی ہیں, کیونکہ انسانوں کو سجدہ, انسان کو سجدہ کرایا گیا فرشتوں کے ذریعے. اچھا, اب جب ان کو یہ علم اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصی علم ان کو عطا فرمایا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو ایسے غیب کے علوم میں سے علم دیا گیا, مگر یہ یاد رکھیے کہ ان کو کوئی کلی علم نہیں تھا. اس لیے کہ اگر ان کو کلی علم ہوتا تو وہ کیوں پوچھتے کہ آپ کون سے موسیٰ, بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کو انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت ہی کیا ہوتی. جیسے آج وہ ایسے فراڈ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہم آپ کا مسئلہ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے, آپ کا نام یہ ہے آپ کا مسئلہ یہ. اصل میں انہوں نے جنات ان کے قبضے میں ہوتے ہیں, جنات لوگوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں, ان کے نام وارہ پوچھ گیا کہ ان کو بتا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اتنے امپریس ہو جاتے ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کون سا علم ہے. تو ایسے لوگ غلط ہی ہوتے ہیں. تو اب وہ یہ اس لیے یہ بات یہاں پہ مینشن کرنی ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کو پتہ نہیں پورا ہی علم غیب تھا تو ساری چیزیں ان کو پتہ تھی, بلکہ علمناہم من لدنا علما, ہم نے اپنے پاس سے ان کو علم عطا فرمایا تھا. تو کچھ حصے اور یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی بات بعد میں آئی ہے اور رحمت کی بات پہلے آئی. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہو اور پھر علم آئے تو یہ کمبینیشن صحیح ہے. اگر रहमत है, इल्म नहीं है, फिर भी गुजारा चल सकता है, लेकिन अगर इल्म आ जाए और रहमत ना हो तो ये इल्म मैंने बताया ना आपको आफत बन जाता है, ये इल्म एक मुसीबत बन जाता है, क्योंकि इंसान फिर अल्लाह की रहमत ना हो तो इल्म हासिल करने के बाद तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, उसी इल्म को लेकर वो लोगों को गुमराह करने लगता है। तो अल्लाह ताला की रहमत के साथ ही इल्म भी फायदा मंद है, तो हमने उनको रहमत भी दी और इल्म भी दिया, तो अल्लाह ताला की रहमत ही है कि इल्म इंसान को फायदा देने वाला बन जाए, इल्म नाफे बन जाए, क्योंकि उलूम भी तो बहुत किस्म के होते हैं, आगे बात आएगी। قال له موسى, موسى علیہ السلام نے ان سے کہا, هل اتبعوك, کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں, الا ان تعلمني مما علمت رشدا, اس پہ جو آپ جو اس بات کے اوپر کہ آپ مجھے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا رشد میں سے, بہت ساری باتیں اس کے اندر سمجھنے کی ہیں, سب سے پہلی بات ہے اس میں آپ کو ادب پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئی ہیں تو اب یہ نہیں آ کے کہہ رہے کہ آپ بس مجھے سکھا دیں, جیسے کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے آپ سکھائیں نا ہمیں, اگر ہم اتنی دور سے آئے ہیں, اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, اتنے ہم تھکے ہوئے ہیں, بس جلدی جلدی سکھائیں, بس دو چار دنوں میں مجھے سکھا کے فارغ کریں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں نے جا کے اپنی قوم بھی دیکھنی ہے, یہ رویہ یا حل اتبیوں کا ایک ریکویسٹ ہے اور ایک اجازت مانگ رہے ہیں, کیا میں کروں, یہ نہیں کہ میں اب آپ کے ساتھ چلوں گا, میں بس آپ کے ساتھ چلوں گا, مجھے پتا چلا آپ کے پاس بڑا علم ہے تو بس میں چلوں گا آپ کے ساتھ, نہیں, کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں, کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں. علماء نے اس بات کو لے کر فرمایا کہ اتبعو کا اس کا مطلب یہ ہے فالوئنگ کرنا, اور فالو کب کیا جاتا ہے جب کسی کی اطاعت کی جائے, کسی کو کی بات مانی جائے. تو انہوں نے کہا کہ پہلی چیز علم حاصل کرنے سے بھی پہلے یہ چیز ہے کہ انسان اس پہ کمیٹڈ ہو کہ وہ اپنے استاد کی بات کو مانے گا, یہ نہیں ہے کہ بات نہیں ہم نے ماننی, ایسا آپ علم سکھائیں اور ہم جا رہے ہیں. اور آج تو رویے یہ ہوتے ہیں کہ انسان لوگ آتے ہیں علم سیکھنے کے لیے, لیکن حال یہ ہوتا ہے ان کا کہ بس آپ سکھائیں ہمیں, بس اب مطلب جلدی جلدی آپ ہمیں پڑھا دیں, ہم بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے, اور پھر دوسری ہم نے آپ کی کیا بات سننی ہے یا ماننی ہے. یہاں پہ تو وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں آپ کو پیروی کروں گا, فالو کروں, فالوئنگ ہوتی ہی اطاعت کے ساتھ ہے, یعنی میں آپ کی بات مانوں گا, میں آپ کو فالو کروں گا, آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا. اور اس میں علماء نے ایک اور معنی بھی کیا کہ میں آپ کی خدمت کروں گا اس پہ کہ آپ مجھے تعلیم دیں, اس میں سے یہ بھی معنی نکالا ہے. تو آج کیا یہ جو میں آپ کو حال بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آج آ کے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کے رویے ہوتے ہیں, استاد کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات مانیں, ہم نے تو آپ کی بات کیا ماننی ہے, آپ ہماری بات مانیں گے یہ تو پھر ہم نے پڑھائی کرنی ہے ورنہ میں کورس چھوڑ کے جا رہی ہوں. یعنی دھمکیاں دیتے ہیں, میں تو نہیں پھر پڑھ سکتی, آپ ایسا کریں, پہلے ہمارا گروپ یہ کریں, پہلے ہمارے یہ کریں, پہلے آپ سلو پڑھائیں, پہلے آپ تیز پڑھائیں, پہلے آپ اتنی دیر میں ختم کریں, یا ایسے, ارے کی اپنی مرضی ہے نا, ورنہ ٹیچر نے کیا اسٹوڈنٹ کو فارغ کرنا ہے, اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہم آپ کو فارغ کر دیں گے, یعنی اتنا پریشر دیتے ہیں استاد کے اوپر. یہ تو اسی لیے تو علم کی دیکھ لینا آج کوئی حال نہیں ہے, پڑھ پڑھ کے بھی کوئی حال نہیں ہے, کیونکہ کوئی قدر نہیں ہے, نہ علم کی کوئی قدر ہے, نہ علم والے کی کوئی قدر ہے. آج اس علم کی اس لیے ویلیو نہیں کہ جو کہتے ہیں تو بس مفت میں ہی مل رہا ہے نا, اس لیے مفت چیز کی ویلیو نہیں, جہاں پہ پیسے دینے پڑے وہاں پہ بھی تھوڑے سیریس ہو جاتے ہیں, مگر اس لیے نہیں کہ ہم کو علم کی قدر ہوتی, اس لیے کہ یہاں پہ پیسے دیے ہیں, پھر بار بار کہتے ہیں ہاں اتنی فیس دی ہوئی ہے نا تو کلاس میں تو جانا ہی چاہیے, وہاں پہ بھی پیسوں کی ویلیو ہے. تو یہاں پہ ادب, ایک اسٹوڈنٹ کو کیسا با ادب ہونا چاہیے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ استاد کے سامنے اپنی اوبیڈینس کا اظہار کریں, क्या मैं आपके साथ आपको फॉलो कर सकता हूं? और मूसा अलैहिस्सलाम की हम्बल वर्स आप देखें, उनकी आजी देखें, थके हुए फिर भी ये कह रहे हैं, फिर भी उनसे इजाजत चाह रहे हैं, फिर भी कोई धौंस नहीं है, फिर भी कोई धमकी नहीं है। अल्लाह के देखिए, खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे पास अलग इल्म है जो आप नहीं जान सकते, और आपके पास एक इल्म है जो मैं नहीं जान सकता। दोनों अलग अलग इल्म के मालिक थे। मैंने आपको बताया ना, उनके पास अल्लाह ताला ने कोई स्पेशल इल्म दिया हुआ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम इस इल्म को लेने आए, वरना ऐसा नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपने पास कोई इल्म नहीं। तो चाहे बंदे का अपना इल्म कितना ही हो, मगर जब इल्म लेने का वक्त आए तो आजी जरूरी है। याद रखिए, जब आपने, आप देखिए एक बर्तन है ना, जब आपने उसमें पानी लेना है तो बर्तन को नीचे होना पड़ता है, और जिस बर्तन से पानी उंडेलना उसको ऊपर लाजमी होना पड़ेगा। अगर जिस बर्तन से आपने पानी लेना उसको नीचे कर देंगे और खाली बर्तन ऊपर कर देंगे, तो क्या कभी पानी उसमें आ सकता है? नहीं आ सकता। उसको नीचे ही जाना पड़ेगा, तभी उसके अंदर पानी आ सकता। तो ये बातें सोचना कि हमने तो आजी की क्या जरूरत है, ये हमारे लिए आजी करे ना, ये हमें इस तरह से बताए, ये हमारे लिए सारा कंफर्ट का इंतजाम करे, इनको हमारी बात माननी चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। और तकब्बुर के साथ इल्म नहीं आना कभी भी। और यहां से उलमा ने एक और बात निकाली है, उन्होंने कहा कि देखो, बेस्ट तरीका इल्म हासिल करने का यह है कि किसी उस्ताद से इल्म हासिल किया जाए। यहां पे वो उस्ताद के साथ रहने को कर रहे हैं, ये सोच कि मैं सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के, बाज लोग कहते हैं ये घर में हम इतनी तफसीरें हमारी पढ़ी हुई, हम वो पढ़ते रहते हैं बस, हमने आगे क्यों सीखना। याद रखें, जो लोग घर में तफसीरें किताबें पढ़ पढ़ के समझते हैं ना कि हम आलिम बन गए, कभी सही इल्म नहीं हासिल कर सकते, वो ठोकर खा सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ, छोटी सी, और बेशुमार मिसालें हमारे उस्ताद कराम बहुत मिसालें दिया करते थे। एक मिसाल मेरे सामने आई कि किसी ने कहा कि हमने इमाम नूई की बुक पढ़ी है। इमाम नूई कौन? इमाम नूई, पता चला इमाम नववी को कह रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं, पता ही नहीं कैसे, जाहिर है किताबें पढ़ पढ़ के देख ली। तो इसी तरह बाज दफा सिर्फ किताबें पढ़ने से ऐसे होता कि इंसान कहा कुछ किया होता है, समझ कुछ और लेता, कौन वेरीफाई करेगा कि आपने सही समझा कि नहीं। दूसरे इंसान को ये नहीं पता होता कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। और आप देखें, किसी और फील्ड में ऐसे नहीं है, आप मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं पे भी ले लें, कोई मेडिकल की किताबें घर में पढ़ पढ़ के डॉक्टर नहीं बन जाता। लेकिन दीन का इल्म क्या इतना फारिग है कि इसके लिए ना किसी उस्ताद की जरूरत है, ना सीरियसनेस की जरूरत है, ना स्टूडेंट बनने की जरूरत है। बस हम समझते हैं ऐसे ही, बस बर्तन धोते, गाड़ी चलाते, टीवी देखते, या व्हाट्सएप के ऊपर बस थोड़ी वीडियोस देख के बहुत बड़ी मेरे इल्म की बातें आ गई हैं, मुझे दीन का सारा इल्म आ गया, हमें कुछ और सीखने की जरूरत है, सब पता चल गया, हम गूगल के ऊपर कर करके देख के तो चलो जी चीज मसलों के हल निकाल ली। तो क्यों नहीं आप ऐसे करते कि अगर कभी बीमार हो तो दवाइयां भी यहीं से गूगल से पूछ के ले लिया करें, क्यों डॉक्टर के जाते हैं? फिर आप देखें यहां पे अला अन तो अल्लिमा नी था नी, लेकिन यहां पे या गिर गई। क्यों? उलमा कहते हैं इतना प्यारा नुक्ता इसमें भी कि मूसा अलैहि सलाम इतने एक्साइटेड थे सीखने के लिए, इतने बेचैन थे सीखने के लिए कि तो अल्लिमा नी भी नहीं कहा, बस तो अल्लिमा नी मिम्मा अल्लिमता रुशदा, नहीं वो बस बीच बीच जा रहे हैं और बेचैन है कि बस मुझे सिखा दे किसी तरह। सुभान अल्लाह, उनका शौक, उनका जज्बा, उनकी कमिटमेंट देखें तो सही। और किसमें से? उलमता रुश्दा, रुश्द में से। रुश्द क्या होती है? सही फैसला करने की सलाहियत, समझ बूझ, रास्ती, हिदायत, खास इल्म है। इल्म का लफ्ज नहीं आया यहां पर, रुश्द का है, जिसमें भलाई हो, क्योंकि उलूम बहुत सारे हो सकते हैं। और यहां से इल्म का लेने का अदब भी हमें आया। अदब क्या होता है, क्योंकि इल्म का भी अदब होता है। इमाम शाफी ने इमाम मालिक से इल्म लिया, फिर उसके बाद जब इल्म ले लिया, हालांकि मौता इमाम मालिक उनको याद थी, इमाम शाफी को जब अभी पढ़ने के लिए आए थे ना, उनकी अम्मी उनको लेकर आई इमाम मालिक के पास, तो उन्होंने पूछा भाई कुरान हिफ्स है, ये है, तो सब हिफ्स है, ये है, अशार भी कई आते थे, और उन्होंने कहा कि मेरे क्रेडेंशियल सबसे बड़ी तो बात यह कि मुझे मौता इमाम मालिक जो है मुझे जुबानी याद है। और फिर उसके बाद वहीं बैठे, फिर कई साल इन लिया, जब इन ले लिया तो लोगों ने, बाकी लोग तो चले गए, उन्होंने कहा कि आप क्यों ठहरे हुए हैं अभी तक, आप क्यों अभी तक पढ़ना चाहते हैं, आपने इल्म ले तो लिया। फरमाया कि अब मैं इल्म का अदब सीख रहा हूं, ठीक है, मैं इल्म का अदब सीख रहा हूं। इल्म अदब के साथ ही आता है, देखिए वो कहते हैं ना, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। अगर आपके नजदीक टीचर की कोई अहमियत नहीं है ना, कोई हैसियत नहीं, वो आपको ऐसे लगता है ये क्या चीज है, इससे ज्यादा तो मुझे ही पता है, तो यकीन जाने आप 100 साल भी उस उस्ताद से सीखते रहेंगे, आपको नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के बता दूं। तो इल्म के लिए, इल्म जिससे आप लेते हैं उसके अदब जरूरी है। जहां पे भी आप जाएं, किसी किस्म का भी इल्म ले, और इतने बड़े पैगंबर भी अपने आप को कैसे उनके सामने बिछा रहे हैं, कैसे उनके सामने वो आजी का इजहार कर रहे हैं। और कहते हैं मिन माल्लिम तरजदा, मिन ये तबाइजी है, बाज उसमें से जो इल्म आपको सिखाया गया, यानी जो आपको सिखाया गया उसमें से, यानी एक इसका मतलब ये कि ये नहीं मैं कह रहा कि सारा कुछ ही मुझे इल्म दे दे, बस मुझे अपने जितना इल्म सिखाएं जितना आपके पास है, नहीं, इसमें से मेहरबानी करके मुझे कुछ तो इल्म दे दीजिए। ये कितनी अदब की इसमें बात है। दूसरा ये कि जैसे अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये इनाम फरमाया कि आपको सिखाया, तो आप भी मेरे साथ मेहरबानी करें कि आप मुझे सिखा दें। और देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी सिर्फ कि मैं, मेरे पास सबसे ज्यादा इल्म है, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा तालिबे इल्म बना दिया, नहीं जाओ अभी और सीखना है तुम्हें। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका इल्म मुकम्मल हो। मैंने जैसे आपको बताया कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जो इल्म है वो आपके पास नहीं है, यानी मेरे पास नहीं है वो, और ना आपके पास जो इल्म है वो मेरे पास है, ना मेरे पास जो इल्म है वो आपके पास है। तो इसलिए कोई भी मुकम्मल नहीं, आपके पास कितना भी इल्म हो फिर भी सीखने की और हर एक को जरूरत। सूरह यूसुफ में हम पढ़ नहीं रहे कि पढ़ा है हमने कि हर आलिम के ऊपर एक आलिम है। तो इसलिए कभी अपने आप को ना सोचें कि मैं बहुत बड़ी आलिमा बन गई, मैं आलिमा, मैं फाजला, मैं पता नहीं क्या। बहुत सारे लोग तो अपने आप को आलिम कहलाते हैं, आलिमाएं कहलाती हैं। तो ऑलवेज इंसान को तालिबे इल्म रहना चाहिए। और फिर ये बात भी उलमा ने कही है कि इल्म जो है ना, सीखना भी एक चीज और सिखाना एक और चीज है। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम चाहते तो अपनी कौम के अंदर इल्म सिखाते रहते ना आते, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ के इल्म सीखने को अब ज्यादा तरजीह दी कि मैं सीखने जाना चाहता हूं, और ना सिखाने वाले भी तो बन सकते थे, वहीं पे सिखाते रहते बस। और इससे पता चलता है, उल्म ता रुशदा से पता चला ना कि ऐसा खास इल्म जो भलाई का इल्म हो, जो नफा मंद इल्म हो, जो रास्ती वाला इल्म हो। तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है ना, मसनून दुआओं में, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, अल्लाह मुझे नफा मंद इल्म अता फरमा। क्योंकि बाज दफा इंसान ऐसे ही उलूम भी हासिल करता है जिनको कोई नफा नहीं है, ना दुनिया का कोई फायदा तो ना आखरत का। आप सल्लम ने फरमाया इल्म सीखो, और इल्म सीखने के लिए सकीनत और वकार इख्तियार करो, ठहराओ यानी अपने मिजाज में ठहराओ लाओ, और तवाजो इख्तियार करो यानी आजी का मुजाहिरा करो। यह हदीस है। तो तवाजो के बगैर कैसे इल्म आ सकता है। उन्होंने क्या फरमाया, काला उन्होंने फरमाया किसने, खिजर अलैहिस्सलाम ने, इन कला तस्तुतिया माया सबरा, कि आप मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। इससे पता चला कि बाज दफा उस्ताद देख के ये भांप लेता है कि ये शागिर्द जो है ना ये वाला इल्म नहीं हासिल कर सकेगा, या वो ये, या शायद बास मुफसरीन ने कहा कि शायद खजर अलैहिस्सलाम ने इसलिए ये फरमाया कि वो देखना चाहते थे मूसा अलैहिस्सलाम कितने कमिटेड हैं, या उनको पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास शरीयत का इल्म है और खजर अलैहिस्सलाम कई ऐसे काम करेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में मना है, तो फिर वो सबर नहीं कर सकेंगे। जैसे आप देखिए ना, मूसा अलैहिस्सलाम जब वो किब्ती के साथ वो बनी इसराइली शख्स लड़ रहा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे खड़े हो गए, उस लड़ाई में कूद पड़े वो, उन्होंने बीच बचाव की कोशिश शुरू कर दी, उनसे देखा नहीं जा सकता था कि कोई चीज गलत हो रही है तो वो मतलब उसके अंदर ना जाए और ना कुछ बोले, तो उनसे कैसे सबर होना था। उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे सबर नहीं हो सकेगा। और इससे हमें यह भी पता चला कि इल्म के लिए दूसरी क्या चीज जरूरी है, सबर। अभी तक आपको इल्म के क्या आदाब पता चले, अपने किसी उस्ताद से इल्म सीखना, ये भी पता चला कि उस्ताद की ओबीडियंस करना कि जो वो बात कहे उसको मानने तो सही, ये नहीं कि हमने नहीं माननी। ये भी पता चला कि इसके अंदर इल्म नाफे के लिए इल्म तलब करना और फिर इल्म के लिए तवाज़ु इख्तियार करना, आजी करना, वो इजाजत ले रहे हैं बड़ी रिस्पेक्टफुली, और फिर ये कि सबर। अगर आप कहें कि मैं पहले दिन ही आई हूं मुझे सारा कुछ सिखा दे, तो नहीं हो सकता। जो हमारा पहला कोर्स था उसमें आज तक मुझे याद है, हमने सूरह फातिहा शुरू की तो स्टूडेंट से इतने, उसके बाद सवाल जवाब का जब सेशन हुआ, इतने सवाल आप पूछे, अच्छा ये बताएं कि ये क्या होता है, वो बताएं, वो यानी वो अभी बात आई नहीं, अभी सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह चल रही है और वो बनी इसराइल का पूछ रहे हैं, उनका पूछ रहे हैं। तो इल्म सबर के साथ आता है, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ जब कोर्स शुरू होता है कि आप लोग अपने सवाल एक जगह लिख लें, जब कोर्स खत्म हो जाए तो आप देखें कि आपके उन सवाल के जवाब आपको मिल चुके हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ना, उसके लिए आपको सबर करना पड़ा, इतनी अरसा पढ़ना पड़ा। और अगर कहें कि भाई आज ही बस हलवा बना के हमें खिला दें और एक दिन में ही हमें बस सारा आ जाए और बस हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम नहीं इतना सबर कर सकते, ये नहीं फिर इल्म आएगा। वह कैफा तस्वीर वाला मालम तो हित भी है खुबरा, और आप सबर करेंगे भी कैसे। अब वो उनको खुद एक्सक्यूज दे रहे हैं कि आप खुद कैसे सबर करेंगे इस बात पे जिसकी आप अहाता ही नहीं कर सकते, उसकी पूरी खबर कर, उसकी पूरी समझ का, यानी एक चीज के कई एंगल्स होते हैं ना, तो आप अहाता नहीं कर सकेंगे, आप एक साइड से देखेंगे वो आपको गलत लगेगी, तो उसके ऊपर फिर आप सबर कैसे करेंगे। तो है तो भी यही इसका बड़ा एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। ये नहीं कहा गया आप उसके ऊपर जो आपको पता नहीं है, नहीं, अहाता नहीं जिसका आप कर सकते, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसकी। पूरी अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब हर एंगल से चीज को देखा जाए और समझा जाए। हम दुनिया में सिर्फ एक एंगल से देखते ना, अपनी जाहिरी आंख से देखते, हमें उसके बातिन में छुपी हुई चीज नहीं समझ आती, लेकिन वो भी उसका एक एंगल है ना। तो ये भी एक अच्छे उस्ताद की एक निशानी है कि वो अपने स्टूडेंट के शूज में आके देखे कि इसके क्या मसले हैं, इसको ये क्या, किस चीज से दो चार हो सकता है, किस परेशानी से दो चार हो सकता है, तो उसकी मुश्किल को समझ के फिर इस तरह उसको एड्रेस करे। उन्होंने ये नहीं फरमाया तुम कहां सबर करोगे, कहां तुम्हारे अंदर इतना सबर है। बाज लोग इस तरह स्टूडेंट्स को पुट ऑफ कर देते कि जब वो उनको डिस्करेज करते हैं, जब उनके साथ हार्श होते हैं, जब उनको कहते तो तुम्हें कहाँ आएगा, तुम भी सबर कर सकते, अरे कहाँ तुमसे सबर होगा, छोड़ो तुम्हारे बस का काम ही नहीं है, ऐसे नहीं कहा, बल्कि आई अंडरस्टैंड, जैसे कि वो कह रहे हैं ना कि मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि तुम सबर कर रहे हो कि भाई कैसे, तुम्हारी ताकत में ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उन चीजों की। अब मूसा अलैहि सलाम तो डिटरमिंड है कि मैंने सीखना ही सीखना है, वो ये नहीं कह सकते वाकई अगर इतना ही मुश्किल काम है तो भाई मैं तो जा रहा हूं वापस। अच्छा इतना मुश्किल है, उसमें इतना सफर करना पड़ेगा, अरे हमसे तो नहीं होता। अब बहुत लोग कहते हैं ना, अच्छा ये भी पढ़ना पड़ेगा, अच्छा तर्जुमा भी याद करना पड़ेगा, ये तो नहीं हमसे हो सकता भाई। ठीक है हम तो नहीं, हम सुन लेंगे लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, कमिटमेंट नहीं कर सकते, स्टूडेंट के तौर पर नहीं आ सकते, मुझे स्टूडेंट ही बन रहे हैं। अब वो ये नहीं कहते तो क्या हुआ, मैंने तो आपके साथ साथ ही चलना है ना, वॉच ही करना है ना, वॉच एंड लर्न ही करना है, इसमें सबर की क्या बात होगी। नहीं, वो आगे से अपनी पूरी फुल कमिटमेंट दिखाते हैं, यानी अपने उस्ताद को वो खुश कर देते ये कह के सता जी दूनी इंशा अल्लाह साबिरा, मैं इंशाल्लाह यानी अपने ऊपर भरोसा करके नहीं, अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं साबिरा। साबिरा जो है ना वो इसम फाइल है, इसमें बहुत ज्यादा सबर, यानी जो इंसान सबर ही करने वाला, सबर का एक मजमुआ होता है वो करने वाला, तो मैं आपको सबर करने वाला मिलूंगा, यानी मेरे आप मुझे ऐसा पाएंगे, बोला आसी लक अमरा, मैं आपकी नाफरमानी तो करूंगा ही नहीं किसी हुक्म में भी नहीं। आप देखें फरमा बरदारी की बात समझ आई ना, कौन कह रहा है, यूशा बिन नून नहीं कह रहे, मूसा अलैहि सलाम कह रहे। वो तो होते तो फिर भी चलो एक नौजवान थे और एक लड़के थे, इनके खातिम थे, इतने बड़े पैगंबर। अब थोड़ी देर के लिए, इसलिए मैंने आपको शुरू में मूसा अलैहि सलाम का एक दफा दोबारा याद दहानी कराई, उनके मकाम और उनके मर्तबे की, कि कितनी बड़ी हस्ती है मूसा अलैहि सलाम, और जिसके साथ जमीन पे अल्लाह ताला खुद बात कर ले, आप बताएंगे किसी और के साथ भी नहीं, अल्लाह ताला ने जमीन पे बात की। आप सरसरम मेराज पे गए थे, वहां पे कलाम किया, इस जमीन पे सिवाय मूसा अलैहि सलाम के किसी और के साथ अल्लाह ताला ने डायरेक्टली बात नहीं की। वो मूसा है जो कह रहे हैं मैं आपकी कोई बात रद्द नहीं करूंगा। तो इससे उस्ताद की ताजीम, उनका अदब, उनके सामने कैसे एक शागिर्द को होना चाहिए, वो ये पता चलता है हमें। असल में आज के दौर में ऐसा है कि कोई भी इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं कि मुझसे ज्यादा किसी के पास इल्म हो सकता, सारे कहते हैं हमें ये क्या चीज है, वो चीज ही नहीं है, मुझे सारा कुछ पता है, मैंने क्यों किसी से पढ़ना, या चलो पढ़ भी लेता हूं लेकिन इतना भी क्या। हालांकि हज़रत अली फरमाते हैं ना कि जिससे मैंने एक लफ्ज भी सीख लिया मैं उसका गुलाम, एक लफ्ज भी, सुभान अल्लाह। तो और यहां पे देखिए इंशाअल्लाह कहते हैं, इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह को हमने इस सूरत में पहले भी देखा कि जब किसी काम का इरादा करो तो इंशाअल्लाह को, और यहां प्रैक्टिकली बता दिया गया कि अल्लाह के पैगंबर भी इंशाअल्लाह कहते थे। अब उन्होंने एक शर्त रख दी खदीर अलैहिस्सलाम ने, फइन तबअतनी फला तसअलनी अन शैइन हत्ता अहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा, उन्होंने कहा फिर अगर तुम मेरी पैरवी करते ही हो तो फिर देखना मुझसे कुछ सवाल ना करना किस चीज के बारे में, जब तक मैं तुम्हें खुद ना बयान कर दू इसका, खुद ना जिक्र कर दू, यानी मुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं, ये मेरी शर्त है मेरे साथ रहने की कि आपको ये करना पड़ेगा, कि आप बीच बीच में मुझसे नहीं पूछेंगे। देखिए ना आप खुद भी वैसे भी देखें कोई भी कोई काम कर रहा हो, बस अभी मैं लेक्चर दे रही हूं, अब आप बीच में अगर सवाल करना शुरू कर दें तो क्या लेक्चर मुकम्मल हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो अब उन्होंने कहा कि आपने मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, यही उनकी एक ही शर्त थी। उससे पता चलता है कि उस्ताद कोई शर्त रख सकता है अपने पढ़ाने के लिए, मसलन है कि आप होमवर्क करके आया करेंगे, आप ये किया करेंगे। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا